हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ब्रह्मचारी आश्रम किसी भी भक्त समाज की शोभा होती है। यदि सारे ब्रह्मचारी अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन करें, अर्थात जो आचरण जो व्यवहार एक ब्रह्मचारी को करना उचित है वो वैसे करेंगे जैसे अन्य लोग भक्त समाज में भी और बाहर भी अपेक्षा करते हैं, वैसे यदि व्यवहार हो जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों की अपेक्षा है आशा है कि ब्रह्मचारी ऐसे होने चाहिए, यदि व्यवहार वैसे हो तो फिर एक ऐसा ब्रह्मचारी आश्रम एक आदर्श आश्रम बन जाएगा जिसमें सारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाएगी। आजकल के समाज में इंद्र तृप्ति से दूर रहना और विशेष करके मैथुन भोग से दूर रहना ये समाज में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे सब जगह बताया जाता है कि यही तो जीवन का उद्देश्य है, इस तरह का भोग करके ही हमारा जीवन सफल होता है, बल्कि इसीलिए हमें जीना चाहिए। तो ऐसे झूठे उपदेश फैलाए जाते हैं और विषय भोग आजकल बहुत जगह फैले हुए हैं संस्कृति के विनाश होने के कारण, और इसमें लोग कोई बुराई नहीं समझते हैं बल्कि इसको स्वाभाविक समझते हैं। स्वाभाविक एक बद्ध जीव के लिए जो अपने धार्मिकता को भूल चुका है ऐसे व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, परंतु एक सज्जन सभ्य व्यक्ति जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है मनुष्य योनि प्राप्त करके और जो पाप से मुक्त रह के भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये स्वाभाविक नहीं है। भले मन में इच्छाएं आती रहें जाती रहें, परंतु यदि एक भक्त जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की चेष्टा कर रहा है वो अपने हृदय में समर्पित हो भगवान गुरु और वैष्णवों के प्रति और हृदय पूर्वक वो चाहे कि वो इन अनर्थों से मुक्त हो और ऐसी प्रार्थनात्मक भावना से जीते हुए वो अपने साधना को बड़े निष्ठापूर्वक करे, तो अवश्य ऐसे ब्रह्मचारी के ऊपर या ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के ऊपर भगवान की कृपा अवश्य आएगी। और विशेष करके ब्रह्मचारी जीवन में नम्रता ये बहुत बड़ी चीज होती है। सारे समाज में हर एक व्यक्ति को ऐसे रहना चाहिए, परंतु विशेष करके जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन केवल अपने प्रयास से संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकेगा अपने प्रयास से केवल, लेकिन भगवान और गुरु, गुरुजनों की, वैष्णवों की आशीर्वाद से ये सब संभव आसानी से हो सकता है। कृपा के कारण असंभव कार्य संभव हो जाता है, और कृपाहीन अवस्था में जो संभव कार्य है वो असंभव बन जाते हैं। इसलिए बाहर के लोग कभी कभी ये मानते हैं कि ये संभव नहीं है, परंतु भगवान और वैष्णवों की कृपा से संभव है और हो रहा है। तो हमारा पथ कृपा का पथ है, परंतु ये कृपा के पथ में हम आलसी नहीं होते हैं, हम निष्क्रिय नहीं होते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि बस हमारा पथ कृपा का है इसलिए हम यूं ही बैठे रहेंगे और कृपा आएगी, नहीं। कृपा उस मात्रा में हमारे हृदय में प्रकट होगी भगवान की, जिस मात्रा में हम इन चीज़ों का पालन करेंगे। पहली बात, हम आज्ञाकारी बन के साधन, हमारे जो साधन भक्ति है इसके अंगों का पालन करेंगे। दूसरी बात, नम्र व्यवहार सबके प्रति रखेंगे, कभी भी घमंड में, घमंड को हमारे हृदय में स्थान नहीं देंगे। तीसरा, एक बहुत आतुर सेवा भाव, जिसमें हम सदैव अन्यों की सेवा करने के लिए या कोई भी कुछ सेवा हो करने के लिए आतुर हों। चौथी बात, वैष्णवों के प्रति एक बहुत प्रेम का संबंध जो नम्रता पर आधारित है, ये हम बनाए रखेंगे। और एक बहुत प्रार्थनात्मक भाव भगवान और वैष्णवों के प्रति रखेंगे कि आप ऐसी कृपा करें कि मेरी इंद्रियों को मैं वश में कर सकूं और मैं अच्छी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकूं। तो ऐसे प्रार्थना का बल बहुत मजबूत होता है। तो जो व्यक्ति, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति है, यदि वो इन चीज़ों को का पालन करेगा, अवश्य उसके लिए इंद्र तृप्ति एक दूर की बात हो जाएगी, और इंद्रियों को वश में करने में भगवान की कृपा से, गुरुजनों और अन्य वैष्णवों की कृपा से ये सब संभव हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व इसलिए है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो भगवान की सेवा के अलावा और कोई भी दूसरे कार्य में अपने आप को नहीं लगाते हैं। जो अन्य भक्त होते हैं गृहस्थ आश्रम में, वो भले भगवान की भक्ति तो कर ही रहे हों, परंतु उनके आश्रम के कारण उनको अनेक कार्यों में लग जाना पड़ता है, उलझना पड़ता है, जिसके कारण उनको भगवान की सेवा करने के लिए समय कम मिलता है। केवल समय की बात नहीं है, मानसिक तनाव भी अधिक होता है। मन में अनेक चीजें आने के कारण व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाता है। परंतु ब्रह्मचारी आश्रम का जीवन बहुत सरल है, सरल जीवन, ऊंचे विचार। इसलिए ऐसे अवस्था में हम भगवान कृष्ण के भक्ति के पथ में बहुत तीव्रता से, सुलभ तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी ऐसे ब्रह्मचारी आश्रम का आश्रय लेते हैं वो भाग्यशाली है। तो ऐसे ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जैसे कई बार हम सुन भी चुके हैं, एक बार भक्ति चारु महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने उनको पहले बार मिले तो बताया कि तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, और ये एक जन्म जो इस समय है तुम्हारे पास वो कृष्ण को दे दो। तो ब्रह्मचारी आश्रम ये है, ये एक जीवन जो हमारे पास है हमें उसे श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना है। बस कितने सारे हमारे जन्म बीत गए और अब जब हम शरण में जाते हैं ये तो हृदय की बात होती है। शरणागति केवल एक बाह्य लक्षण नहीं होता है परंतु ये हृदय की बात होती है। साथ साथ में जब हृदय में कोई बात होती है या हृदय में बात का अनुशीलन हम कराना चाहते हैं तो इसके बाह्य लक्षण भी होते हैं। जैसे आज सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान भक्त के हृदय में जो भक्ति है उसके वश में आ जाते हैं, उससे आकर्षित होते हैं, उस कार्य से नहीं जो कि वो भक्त कर रहा है। फिर भी इन कार्यों का महत्व होता है क्योंकि इन कार्यों के द्वारा हम भगवान तक हमारी भक्ति को पहुंचाते हैं और ये कार्य ऐसे होने चाहिए जो भगवान चाहते हैं। हम कुछ भी करके उस कार्य को भगवान के प्रति भक्ति पहुंचाने का वाहन नहीं बना सकते। उदाहरणार्थ कई ऐसे निषिद्ध कार्य होते हैं भक्त के लिए, जैसे मादक द्रव्यों का सेवन करना। तो कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता कि मैं मादक द्रव्यों का सेवन करके अपनी भक्ति प्रकट करूंगा, नहीं। तो भाव तो होना है लेकिन वाहन को भी हमें ऐसे चुनना है जो कि भगवान बताएं शास्त्रों में। इसलिए बाह्य जो वाहन होता है, जो कार्य होता है, हमारे जो आचार होता है, ये सब महत्वपूर्ण होता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मचारी आश्रम में यद्यपि शरणागति, समर्पण ये सब मुख्य चीज़ें हैं, फिर भी थोड़े बाह्य लक्षण भी होते हैं। जैसे हम सब आश्रम में निवास करते हैं, हम सर मुंडवा लेते हैं, हम जल्दी सुबह उठते हैं, कार्यक्रम में शामिल होते हैं, आज्ञाकारी होकर जो सेवा बताई जाती है वैसे करते हैं और साथ साथ अमुक प्रकार के वस्त्र भी पहनते हैं। तो थोड़े समय रहने के बाद आश्रम के अंदर एक ब्रह्मचारी को गहरे हुए वस्त्र मिलते हैं जिससे कि वही भक्त अपने अंदर हृदय में अपनी श्रद्धा को, निष्ठा को और सुदृढ़ करने में प्रेरित हो जाए। जब दीक्षा मिलती है तो एक दृष्टि से बड़ा बड़ा यज्ञ होना, इतने सारे भक्तों को एक साथ होना, इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसे किया जाता है ताकि जो दीक्षा लेने वाला भक्त है उसके मन में इस कार्य की गंभीरता अच्छी तरह से बनी रहे। यूं ही बस कोई दीक्षा हो जाता है, दो आदमी बैठे हैं, गुरु शिष्य को दीक्षा दे देता है तो इतनी गंभीरता बात में शिष्य के शायद नहीं रहेगी, वो भी उसको बहुत हल्का ले लेगा। लेकिन जब बड़ा अनुष्ठान होता है और इतने सारे लोग उपस्थित होते हैं तो वो व्यक्ति समझता है कि हाँ, भगवान के सामने, अग्नि के सामने, भक्तों के सामने मैंने ये सारे व्रत लिए हैं तो मुझे अवश्य पालन करना चाहिए। तो ये सारे बाह्य कार्य होते हैं, इनका भी महत्व होता है क्योंकि वो हमारी निष्ठा को परिपक्व बनाने में मदद करते हैं। उसी प्रकार से वस्त्र, एक दृष्टि से भक्ति में हमारा वस्त्र का कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई पैंट सूट पहने, कोई धोती कुर्ता पहने, भगवान बाहर का पोशाक नहीं देखते हैं, वो हृदय का रंग देखते हैं। फिर भी हमारे हृदय के भीतर अनुकूल भाव जागृत करने के लिए बाह्य जो हमारे वस्त्र और कार्य और रहने का स्थान आदि होते हैं इसको हम चुनते हैं। तो ब्रह्मचारी आश्रम में ये गहरे वस्त्र का महत्व ये होता है, ये हमें मदद करता है हमारी आगे भक्ति में बढ़ने के लिए। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें याद रखते हैं, हाँ मैंने ऐसे वस्त्र पहने हैं, तो थोड़े ध्यान से हमको रहना चाहिए। हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते। अब जब हम किसी से कुछ बात करते हैं, हम किसी से बोल रहे हैं, चाहे अंदर हो बाहर हो, हमें याद रहता है कि हाँ अभी हमने गहरे वस्त्र धारण किए हुए हैं, हमको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हम इतने ढीले होकर कुछ भी करना जैसे पहले करते थे अब नहीं कर सकते। ऐसे अनेक और कारण हैं। एक तो गहरे वस्त्र का उद्देश्य होता है, अग्नि का प्रतीक है। जिस अग्नि के कारण हमारे हृदय के अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो जल जाते हैं, वैराग्य का एक लक्षण है ये गहरवा रंग। वैसे सफेद भी शुद्धता का लक्षण है। तो चाहे हम सफेद पहन रहे हों, गहरवे पहन रहे हों कपड़े, हमारे जीवन का उद्देश्य शुद्धिकरण है। परंतु सफेद कपड़े गृहस्थ आश्रम में भी हो सकते हैं, परंतु गहरवे वस्त्र गृहस्थ आश्रम में नहीं पहने जाते। तो ब्रह्मचारी जब गहरवे वस्त्र धारण करता है तो वो समाज को ये बताता है कि मैं अब ब्रह्मचर्य के पालन करने के पथ में बहुत गंभीर हो गया हूँ, और अपने आप की श्रद्धा को भी और सुदृढ़ बनाता है वो भक्त। लेकिन साथ साथ ब्रह्मचारी को याद रहना है कि ये गहरवे वस्त्र पहनने से हमें और नम्र होना है। हमारे हृदय में तनिक भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि अब मैंने गहरवे वस्त्र मेरे पास हैं, मैं कोई विशेष हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, या मुझे कोई विशेष स्थान मिलना चाहिए, कोई सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे विचार ब्रह्मचारी के मन में कभी नहीं आने चाहिए, बल्कि किसी के भी मन में नहीं आने चाहिए, चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों न हो। तो यहाँ हमारे राधा गोकुलानंद मंदिर के ब्रह्मचारी आश्रम में अनेक भक्तों ने गहरवे वस्त्र धारण पहले से किए हुए हैं, समय समय पर अनेक भक्त करते आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो जिन्होंने गहरवे वस्त्र पहले से धारण किए हुए हैं, ये एक मौका आज है जब हम पुनः याद करें कि हमने गहरवे वस्त्र क्यों स्वीकार किए थे। हमें उतने ही गंभीरता से, परिपक्वता से आगे बढ़ना चाहिए। इस उद्देश्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिनके गहरवे वस्त्र नहीं हैं, जो आगे लेना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा है कि हाँ आगे चल के मुझे भी ऐसे तैयारी करनी है गहरवे वस्त्र पहनने के लिए, ताकि मैं भी अपना जीवन ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करूँ। और बीच में ऐसे एक भक्त आज है जो अभी गहरवे वस्त्र स्वीकार करने वाला है ना,
आश्रम में भी वेदांत आश्रम से,
और भक्ति वेदांत आश्रम से भी अभी ऊपर ब्रह्मचारी आश्रम में आ रहे हैं। नित्य गोपाल प्रभु अभी अनेक महीनों से ब्रह्मचारी आश्रम या भक्ति वेदांत आश्रम में रहे हैं और बहुत अच्छी सेवा की है और करते आए हैं, और अनेक अभी महीनों के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बाद भी अब मन में सुदृढ़ बात हुआ है कि नहीं, हमें ब्रह्मचारी बनना है। तो आज ये एक छोटा सा अनुष्ठान किया जा रहा है नित्य गोपाल प्रभु को गहरवे वस्त्र देने के लिए, ताकि वो भी अपने भक्ति जीवन में और सुदृढ़ रूप से आगे बढ़े। तो नित्य गोपाल प्रभु को गहरवे वस्त्र देने के पहले ऐसा करते हैं, पहले वस्त्र देते हैं, उसके बाद में फिर चर्चा करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब प्रार्थना कीजिए श्री श्री राधा गोकुलानंद से, श्रील प्रभुपाद से, कि वो नित्य गोपाल प्रभु के ऊपर भूरी भूरी आशीर्वाद उनकी कृपा बरसाएं ताकि वो अच्छी तरह से आजीवन ब्रह्मचारी आश्रम में रह के अपना जीवन सफल बनाए। हरे कृष्णा, आओ नित्य गोपाल प्रभु ये पहन के आ जाओ। हरे थोड़ा कीर्तन 5 मिनट कर लेना। राम मूर्ति प्रभु या भद्रसेन प्रभु का कीर्तन।
हरे कृष्णा
Hare 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 Hare
हरे कृष्णा। अभी नित्य गोपाल प्रभु कुछ सब भक्तों को अपने हृदय की बात कुछ बताना। अब गहरे वस्त्र पहन के कैसे लग रहा है और आगे चल के क्या करना है?
जैसे कि महाराज बता रहे थे कि ब्रह्मचारी जीवन अपने बल पर हम मतलब उसका पालन करना असंभव है, तो मैं महाराज से और सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि इस ब्रह्मचारी जीवन को मैं बनाए रखने के लिए आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और साथ में एक प्रार्थना कीजिए कि मैं इस ब्रह्मचारी जीवन में गंभीरतापूर्वक रहूँ और सारे नियमों का पालन अच्छी तरह से करता रहूँ। और साथ में कहते हैं कि ये जो लाल कपड़ा या गेरुआ कपड़ा है ये हमारी भौतिक इच्छाओं को जलाता है, परंतु ये भी जब तक भगवान की कृपा या भक्तों की कृपा नहीं होगी तो वो भी असंभव है। इस दोनों के लिए सभी से मेरा प्रार्थना है कि नम्र निवेदन है कि मैं ब्रह्मचारी जीवन में आश्रम में रहते हुए जीवन भर महाराज की और भक्तों की अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक सेवा करता रहूँ। ब्रह्मचारी जीवन मनुष्य बना है।
आप ऐसे कौन कुछ कहना चाहेंगे अभी?
हाँ,
हिंदी में बोलो। हिंदी
में कृष्णा पुस्तक में चार प्रकार के ब्रह्मचर्य के बारे में उसके बारे में भी आपसे सुनना चाहिए। गुरु कैसे ब्रह्मचारी के साथ अलग अलग परिस्थिति 3 दिन के लिए, 1 साल के लिए, फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी और नारकुंडी का भी वर्णन है। सो इसको कैसे गुरु उसके ब्रह्मचारी के साथ कैसे व्यवहार कैसे वो हैंडल करता है इसे, मतलब ये प्रश्न भी है बट आई वांट टू हैव डिस्कशन अबाउट दैट।
वैसे नैष्ठिक और उपकरवण ये दो होते हैं। उपकरवण मतलब जो गृहस्थी में रह के भी ब्रह्मचारी होता है, केवल संतान की उत्पत्ति के लिए ही वो संभोग करता है, तो ऐसा कोई गृहस्थ है तो उसको भी ब्रह्मचारी कहते हैं, उपकरवण ब्रह्मचारी। और जो कभी विवाह नहीं करता है तो उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, निष्ठावान। नैष्ठिक का मतलब निष्ठा से उत्पन्न होता है, निष्ठावान पहले से ही ब्रह्मचारी है। तो पहले जो ब्रह्मचारी हुआ करते थे वो गुरु के आश्रम में रह के जंगल में जहाँ भी आश्रम हुआ करता था वहाँ रह के वो सेवा करते थे, जैसे यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करना और तरह तरह के सेवाएं करना। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मचारियों का जीवन या उनके कर्तव्य इतने कुछ बदले नहीं हैं। हाँ, आजकल मोबाइल फ़ोन और ईमेल इस्तेमाल करते ब्रह्मचारी, उस दिन उस समय नहीं करते थे, लेकिन ये बाह्य चीज़ों के अलावा बाकी उद्देश्यों में कोई ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। वही चीज़ें जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दंतः शांतः, तो हमारे इंद्रियों को वश में करना, मन को शांत करने का प्रयास करना, गुरुकुल में रह के गुरु के हर आज्ञा का पालन करने का प्रयास करना, ये सब चीज़ें तो रहती ही हैं, इसलिए ऐसे कोई अंतर नहीं है। तो ब्रह्मचारी आश्रम का मुख्य पहचान ये होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन वो करता है और आज्ञाकारी सेवक होता है, अपने अध्ययन में समय लगाता है। ये छात्र विद्यार्थी का स्तर है, साथ साथ जो भी सेवा होते हैं बड़े उत्साह से वो सेवा करता है, इसलिए अधिक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
साल रहना चाहिए ऐसे वर्णन ब्रह्मचारी आश्रम 25 years है, बाद में 25 years गृहस्थ आश्रम प्रणाशन, बट कृष्णा बुक में वो वर्णन है कि वो तीन दिन दीक्षा लेने के ब्रह्मचर्य व्रत को तीन दिन पालन करता है, बाद में वो एक साल पालन करता है, मतलब एक साल पालन किया खड़े नियम से, बाद में इज ही गोइंग टू रिटर्न टू हिज हाउस और इज कंटिन्यूइंग और इज नॉट एबल टू फॉलो इट।
हाँ, ऐसे वैदिक सभ्यता में हर तरह के व्यक्ति के लिए कोई सुविधा होती थी। अधिकतर लोग थोड़े समय तक गुरु के आश्रम में रह के फिर आगे चल के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, परंतु थोड़े लोग गुरु के आश्रम में रह जाते थे और कभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे। तो अलग अलग समय तक ब्रह्मचारी रह सकता था, जैसे कृष्ण और बलराम कितने समय के लिए रहे? 64 दिन। 64 दिन, एक एक दिन एक एक कला वो सीख लिए, 64 दिन रह के वो वापस आए, फिर गृहस्थ आश्रम में आए। तो ब्रह्मचारी आश्रम में, जब यहाँ हमारे संस्था में ब्रह्मचारी आश्रम की बात होती है, तो भी ऐसे देखा जाता है कि अनेक थोड़े समय के लिए रह के, कोई कम समय के लिए, कोई ज़्यादा समय के लिए रह के फिर आगे चल के गृहस्थी बन जाते हैं, और कोई जो रह गए हैं शेष जो हैं वो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं। तो ये नियम तो हाँ वैदिक सभ्यता में है, तरह तरह के समय बताए गए, इतने समय तक रहना, फिर इतना समय रहना। आजकल में ये इतना कुछ लागू नहीं है, जो जितने समय तक रह सकता है उतना अच्छा है। यह रह के फिर जब ब्रह्मचारी आश्रम का ऐसे जीवन का स्वाद मिल जाए, फिर वो नहीं जाएगा, और किसी कारणवश उसे जाना भी पड़ा तो कोई नुकसान नहीं है उसको, क्योंकि उसने ब्रह्मचारी आश्रम का वातावरण का अनुभव कर लिया, उसको ये प्रशिक्षण मिल गया, और आगे चल के वो अच्छी तरह से गृहस्थ आश्रम का पालन कर पाएगा। जो व्यक्ति अच्छा ब्रह्मचारी नहीं हुआ है वो अच्छा गृहस्थ भी नहीं हो सकता। तो अच्छे गृहस्थ हमारे समाज में चाहिए, तो उनको पहले ब्रह्मचारी रहने का अभ्यास करना चाहिए। हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में जो राजा हुआ करते थे, वो अपने को, अपने पुत्रों को पहले तपस्या करने के लिए भेज देते थे। जैसे कि दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को भेजा, दक्ष प्रजापति का सौभाग्य था, लेकिन उन्होंने सोचा दुर्भाग्य है कि उनके सभी पुत्र नारद मुनि द्वारा ब्रह्मचारी बनाए गए, वो अलग बात है। परंतु दक्ष प्रजापति भी एक आसक्त गृहस्थ होने के बाद भी वो जानते थे इस महत्व को, इस चीज़ के महत्व को, कि पहले व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना ही चाहिए, और उसके बाद यदि उसकी उसका मन करे तो वो गृहस्थ बन सकता है। तो हाँ, ऐसे वैदिक सभ्यता के अनुसार अलग अलग समय बताए गए हैं जिसमें ब्रह्मचारी आश्रम में रह के ब्रह्मचारी का पालन कर सकता है। तो आजकल के ज़माने में इसका क्या महत्व है? अधिक नहीं, समय का इतना महत्व नहीं है। जो जिस समय तक रह सकता है, अच्छी तरह से नियम का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके रह सकता है और उत्साह से सेवा कर सकता है तो अच्छा है, और आगे चल के किसी का मन हो तो वो आश्रम परिवर्तित कर भी सकता है। तो मूल सिद्धांत वही है, हालांकि जो डिटेल्स हैं वो चेंज परिवर्तित हो गए होंगे, लेकिन मूल चीज़ वही है। हाँ, वातावरण में बहुत अंतर हो गया है कि आजकल ब्रह्मचारी तो केवल आश्रम में ही हो सकता है, जो आश्रम के बाहर रहता है उसको ब्रह्मचारी नहीं कहते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में हर एक बच्चा प्राय, खास करके 3 वर्णों के बच्चे, वो आश्रम में जाया करते थे 5 साल से लेकर 25 साल की आयु तक। तो जितने भी विद्यार्थी थे वो ब्रह्मचारी कहलाते थे। आजकल भी देखा जाता है कि 5 और 25 साल के बीच में सभी लोग विद्यार्थी रहते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं रहते। ये एक अंतर है, क्योंकि आजकल आश्रम में रहने की पद्धति नहीं रही है। और यदि कोई बोर्डिंग स्कूल में भी चले जाए, माता पिता भेजे, वो बोर्डिंग स्कूल ही है, आश्रम का वातावरण बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए छात्र या विद्यार्थी होने के बाद भी वो ब्रह्मचारी नहीं रहता। लेकिन यह राधा गोकुलानंद मंदिर में और जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं जहाँ ब्रह्मचारी आश्रम होते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण के साथ साथ व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी एक अनुकूल परिस्थिति मिले। तो एक दिन हो, 3 साल हो, 10 साल हो, जो भी हो, लेकिन हाँ, यदि किसी को एक ही दिन रहना है तो फिर आश्रम में रहने का कोई अर्थ नहीं है। परंतु जब अधिक समय, जब व्यक्ति कम से कम सोच रहा है कि मैं थोड़े साल तो कम से कम अनुभव ले लूं, फिर ठीक है, ऐसे भक्तों को अनुमति होती है। और फिर उसकी रुचि लगे तो आगे अच्छी तरह से जीवन भर रह जाएगा। और थोड़े भक्त पहले से ही निष्ठा लेके या निष्ठावान होके आते हैं कि हमें आजीवन रहना है ब्रह्मचारी आश्रम, ठीक है। आप में से और किसी को कुछ कहना है नित्य गोपाल प्रभु को थोड़ा प्रेरणा देने के लिए? अंदरसेन प्रभु हेले सोचते हैं ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, बिल्कुल नाम में बुला रहे हैं। उद्धवानंद प्रभु
हरे कृष्ण, ये अनुष्ठान हमारे लिए भी स्मरण दिलाना है, जैसा प्रदर्शन को मैंने बताया उनको भी, जैसा जीवन भर किस तरह से और एक बार सारे नियमों को, भावना को पुनर्जागृत करके उसके अनुसार पालन करें। और साथ साथ हम बहुत पहले से बहुत हमारी इच्छा है कि हमारे आश्रम थोड़ा बढ़े और आश्रम के भक्तों की भावना भी और थोड़ा प्रगति है, इसलिए जैसा ज़्यादा भक्त स्मरण लेंगे तो हमको बहुत उत्साह मिलता है इससे, और हम आशा करते हैं कि ऐसा बहुत जल्दी ऐसा और ज़्यादा भक्त हमारे आश्रम में बढ़ेंगे और हमको प्रेरणा देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा भक्त ब्रह्मचारी सप्रण ब्रह्मचारी होंगे उतना जो बाकी ब्रह्मचारी को शक्ति मिलती है, जितना कम है उतना वो कमज़ोर जैसा लगता है, वो सहज है किधर भी, इसलिए हम वही आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रह्मचारी भक्त इधर आश्रम में आए और सबको प्रेरणा दे, इसलिए हम भगवान की भक्ति थोड़ा और थोड़ा आसानी से भगवान की भक्ति में साधना कर सकते। हरे
कृष्ण। हरे कृष्णा। और कौन बोलना चाहते हैं, एक एक करके जिनको हाथ उठाओ ऊपर, कोई बोलेंगे? और कौन बोलेंगे कुछ?
वसुदेव
सुत।
हरे कृष्ण। एक मैं और हरिराम को जब ऐसे ही सत्संग ले रहे थे 4 साल पहले, तो हम दोनों गोकुलधाम से हैं, हमारा जो 1980 जो मॉडल है सुजुकी उसको लेके आ रहे थे हमारा घोड़ा के ऊपर, वो समर सीजन था तो उस समय शायद उसी दिन बहुत सारे शादी का मोहला था, हम जब भी रास्ते में आ रहे थे किन्या में किरणवाड़ी में, और लास्ट में हम इधर एक कला भवन में हमने देखा बहुत सारे अलग अलग रंग रंग कपड़े पहन के शादी में जा रहे थे, तो उस समय हम देखा कि घोड़े के ऊपर उसको लेके जा रहे थे, तो मैं पीछे बैठा था तो हरिराम प्रभु को मैंने बताया देखो एक दिन का राजा ऐसे मैंने बोला तो हरिराम प्रभु बताया नहीं नहीं वो एक दिन के उसको लास्ट मौका दे रहा है घोड़े के ऊपर बिठाए बाहर जाने के तो उस दिन सोच रहे थे कि हम भी उस दिन उस घोड़े के ऊपर बैठ के उस कपड़े पहन के हम भी इस भौतिक जगह से बाहर जा
रहे हैं। हरे कृष्ण। और कौन बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ दे दो। हाँ अवधूचन।
हमारा जब ये सेपरेट सेरेमनी था उस समय महाराज बता रहे थे कि जैसे सेपरेट का मतलब होता है कि ये हमारा भौतिक इच्छाओं को जलाना का मतलब है, हम सब अपने भौतिक इच्छाओं को जला रहे हैं, और ऐसे ही गोविंद प्रभु महाभारत से एक दृष्टांत दे रहे थे जिसमें अर्जुन और अश्वत्थामा का उन्होंने अपने उसमें वो बता रहे थे कि जैसे अर्जुन वो हालांकि गृहस्थ थे और क्षत्रिय थे, वो स्वर्गलोक में गए थे तो उनका एक तेज को देख के उर्वशी उनसे आकर्षित हो जाती है और उनसे वो कहती है कि आप मेरे संग कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि क्योंकि आप मेरे जो पूर्वज हैं, पुरुरवा के पत्नी थे, इसीलिए मैं आपको उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहा था, मैं आपको माँ के रूप में देख रहा था। ऐसे कहते वो अर्जुन का एक भाव था। और ऐसे ही वो अश्वत्थामा के बारे में कहते हैं कि जब अंतिम क्षण में जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में लास्ट को मर रहा था, उस समय अश्वत्थामा एक बच्चे थे, तो वो अपने वंश को बढ़ाने के लिए वो कहते हैं अश्वत्थामा से कि तुम मेरे पत्नी के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न करो, संतान को उत्पन्न करो। तो अश्वत्थामा जो है वो रेडीली एक्सेप्ट, वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। हालांकि हम जानते हैं वो एक ब्रह्मचारी था। तो हम वो इस कथा से कह रहे थे कि हमें ब्रह्मचार्य का एक जो स्पिरिट है, जो उसका चेतना है, वो बहुत मुख्य है। जब हम स्पेशली गैरवा वस्त्र पहनते हैं तो सब हमें देखते रहते हैं, सब में आते हैं हमारे कांग्रेशन का मात्र हो। जब ऐसे एक है वस्त्र पहन के अगर हम कहीं कुछ गलती करते हैं, गलत नज़र डालते हैं, तो तुरंत वो बहुत बड़ा बात हो जाता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। बहुत ही हम इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आश्रम से ऐसी कोई गलतियां ना हो और वक्त बहुत एक सतर्क चेतना से वो अंतरात्मा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान के चरण में ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण करते हैं।
हरि बोल, उत्तम श्लोक प्रभु। आपने दो शब्द बोल के फिर नित्य गोपाल प्रभु को सैफरन दिया है ना, तो दो शब्द।
हरे कृष्ण, तो उसके हम आशा करते हैं इसका जीवन भर वो चक्र ना होने की।
हरे बोल,
दूसरों को उत्साहित करते। हरे
कृष्णा, हरे बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और जो भी सैफरन वाले हैं सब बोलिए राम मूर्ति प्रभु बोलो। हाँ चलना रूप।
हरे कृष्णा, हमें बहुत खुशी हो रही है कि नित्य गोपाल प्रभु को सम्मान मिला और ऐसे बार बार और आसन की संख्या बढ़ती है और हमको बीच बीच में सैफरन का महत्व समझो कि हम भूल जाते हैं कि एक बार तो सैफरन ले तो भूल जाते हैं, बाद में और किसी को नेक्स्ट टाइम सैफरन मिले तभी बाद में वो सैफरन का महत्व समझे।
हरे ओ हरे कृष्ण श्रीकांत सेन।
हरे कृष्ण, जब पहले परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब भी उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया था तभी बहुत सारे द्रौपद के शिष्य जो थे सफरन में ही थे, कुछ ही भक्त थे वो सफेद में दिखते थे। लेकिन अभी इस समय बता रहे हैं कि बहुत सारे सफेद दिखते हैं और कुछ ही जो भक्त हैं वो सफरन दिखते हैं। तो उसके बारे में बता रहे थे कि मनुष्य की चार आवश्यकता होती है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो उसमें से आहार के बिना मनुष्य जो है जी नहीं सकता और निद्रा के बिना भी नहीं जी सकता, और भय तो रहता है इसलिए रक्षण करना पड़ता है, और आखिरी चीज़ जो है चौथी मैथुन, उसके बिना मनुष्य जी सकता है। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य रह के अच्छी भक्ति करके भगवतम जाना है, इसको बता रहे हैं। तो बड़े खुशी की बात है कि आज नित्य गोपाल प्रभु ने भी अपना जीवन सफल बनाने में एक पाव आगे बढ़ाया है। हरे कृष्ण,
हरे बोल। हरे कृष्ण। और कोई बोलना चाहते हैं?
मैं एक बार सेफ्रॉन लिया और स्वतंत्र श्लोक प्रभु मेरे साथ में कभी भी रहते हैं दीदी है तो एक स्नान करते समय सेफ्रॉन को ऐसा निकल के ऐसा मेरा पाँव से ऐसा उसको ऐसा कर रहा था। उत्तम श्लोक प्रभु बोला, आज तक आप तो जो भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है आप बहुत है धीरे हम बहुत है, आपको दे रहे कलर देखे अब इतना बड़ा नहीं हुआ जितना आपको सेफ्रॉन डाला है ना उतना। तो बोल रहा था सेफ्रॉन का नियम पालन करेंगे इसलिए आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हरिराम बहुत अच्छा है ऐसा नहीं। इसलिए बोल रहा था खाली ये सेफ्रॉन का जो भी नियम है वो पालन करने से ही बस ये कलर ही हमको ये बहुत ही झटका कवर से बाहर देखे जा सकता है। तो इसलिए अब सोच रहे थे मरने दम तक ये कलर का जो भी नियम है उसको पालन करने से बस जो भी हम ये भौतिक जगत का कवर है वो बाहर आ सकते। तो हम इतना ही प्रार्थना करते हैं ये कलर और भी बढ़े ताकि हम ये भौतिक जगत के कवर से बाहर आए। हरे कृष्ण।
हरे बोल। और भी कोई बोलना चाहते हैं जो सफेद में है अभी बोल सकते हैं।
हम लोग जो सफेद में है हमें उत्साह होता है भक्तों को जब देखते हैं कि हमारी उम्र के भक्त जब गहरे वस्त्र लेते हैं तो हम लोग को प्रेरणा मिलती है ऐसे करने के लिए। और दूसरी बात है कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जब मैं नौकरी कर रहा हूँ बाहर वगैरह तो इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह हैं कुछ करने की इच्छा भगवान के लिए कर नहीं सकते। लेकिन जब हम देखते हैं कैसे व्यक्ति लोग डॉक्टर जो अपने भौतिक कार्यक्रमों को त्याग करके ऐसे भक्ति के काम में लेते हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं ऐसे करने के लिए भगवान की फुल टाइम सेवा करने के लिए। जो हालांकि अभी मैं गिरफ्त नहीं हूँ लेकिन बाहर का एटमोसफेयर का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ हालांकि मैं करना चाहता नहीं कर पा रहा। तो मैं भी ऐसे अगर लूँगा तो एकदम फिर दूसरी थी मोर सीरियस में जो भी कर रहा हूँ उसे कुछ अधिक कर सकता हूँ कॉन्शियसनेस एंड एटीट्यूड नीचे को बहुत मैं प्रेरणा मिल रही है को देखा हमारे साथ में रहेगी कर रहे हैं तो हाँ मैं भी कर सकता हूँ।
जय हरि बोल। और कोई बोलेंगे? तो नित्य गोपाल प्रभु सब भक्तों की शुभकामनाएं मिल गई, सब भक्तों की प्रार्थना मिल गई। अभी सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं राधा गोकुलानंद से प्रभुपाद से कि अभी बहुत अच्छी तरह से आश्रम में रह के कृष्ण की सेवा आजीवन अच्छी तरह से करना। ये प्रार्थना इससे हम आज का अनुष्ठान समाप्त करते हैं। अभी आप याद रखना है कि गहरे वस्त्र पहनने से जिम्मेदारी अभी बहुत बढ़ी है। अभी बड़े जिम्मेदारी से ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करना है। अभी नीचे भक्ति वेदांत आश्रम से ऊपर अभी ब्रह्मचारी आश्रम में आ गए तो एक महत्वपूर्ण कदम हुआ जीवन में उठाया है। हरे कृष्णा हरे वो सब तो बाटा डाल रहे स्थान
डाल रहे स्थान थोड़ा खुश हो जाए।
जय हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय हरे कृष्णा हरि बोल ना